ओम शांति। 1958 में ब्रजन दास नामक एक भारतीय तैराक, उसने पहली बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। उसको एक दूसरी महिला भारत की, जो भी एक तैराक थी 18 वर्ष की, आरती शाह, उसने एक खत लिखा और खत में उसको कॉन्ग्रेट्स किया। तो ये जो ब्रजन दास था, इसने उस आरती से कहा कि तुम क्यों नहीं आ जाती और तुम क्यों नहीं इस खारे चैनल को पार करती। आरती शाह कलकत्ता में जन्मी थी और जब वो 4 साल की थी तब से उसने तैरना चालू किया था और बहुत सारे उसके जीवन में कम उम्र में उसने बड़े बड़े तैराकी के क्षेत्र में मेडल्स हासिल किए थे। तो पहली बार जब उसे इस तरह की ऑफर आई कि उसे इंग्लिश चैनल को क्रॉस करना है, उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अपनी प्रैक्टिस चालू की, धन की कमी थी, कई लोग उसके सहयोगी बने। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और बाद में जवाहरलाल नेहरू भी। सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया गया पैसों के लिए और उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। पहले 8-8 घंटा तक तैरना और फिर बाद में 16-16 घंटे तक तैरना, और ये सब करते हुए 1959 में वो यूरोप पहुंची। और ये जो इंग्लिश चैनल है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, बहुत कठिन है क्योंकि जो लहरें हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में आती है। तो अगस्त में उसका वो पहला प्रयास था, पर पहले ही प्रयास में कहा जाता है उसका जो एक बोट का पायलट था वो 40 मिनट लेट आया और उस वजह से आगे उसे वो प्रयत्न छोड़ना पड़ा दबाव के कारण, क्योंकि लहरें बहुत तेज थी। हार हो गई सेकेंड टाइम। 1 मास के अंदर उसने फिर से प्रयत्न किया और इस बार 16 घंटा 20 मिनट में उसने वो इंग्लिश चैनल पार कर दिया और वो विश्व की, या कहो एशिया की, पहली स्त्री नारी जिसने वो चैनल पार किया। हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं? इसमें 2 कारण है। सुबह की मुरली में एक वाक्य आया है जो इंग्लैंड का ये इंग्लिश चैनल पार करते हैं जो स्टीमर, उन्हें प्राइज मिलता है। स्टीमर तो पास करते ही, बोट भी पास करते हैं, परंतु तैराक तैरने वालों ने भी पार किया। और यहां पर एक मुख्य जो चीज है वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, उसने तो ब्रजन दास को एक खत मात्र लिखा था और उसने कहा कि तुम क्यों नहीं पार करती। एक दूसरा भी व्यक्ति है यहां पर, मिहिर दास, मिहिर सेन शायद, उसने भी उसे प्रेरित किया ये कार्य को अंजाम देने के लिए। बचपन में भी दिखाया है कि जब वो केवल 4 साल की थी और एक तालाब था वहां जाया करती थी बंगाल में, वहां से उसकी वो प्रतिभा, तो उसके संपूर्ण जीवन में इंस्पिरेशन है। उसने देखा दूसरों को और उसको लगा मैं भी ऐसा करूं, एक इंस्पिरेशन उसके जीवन में आई, नहीं तो केवल वो खत लिखकर छोड़ दिया होता। परंतु जैसे उसको लगा कि मुझे भी करना है, कोई दूसरा व्यक्ति इंस्पिरेशनल फोर्स बन गया जीवन में। उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में भी वही अमृत वेला और वही मुरली और वही ज्ञान और उसी तरह की दिनचर्या एक समय के बाद सब कुछ डल हो जाता है, सारा पुरुषार्थ सब कुछ वही 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 क्लासेस और वही मुरलिया जो कि हमें सब पता है, और उससे चेतना जरा भी नहीं हिलती, सब कुछ निरस सा लगने लगता है। परंतु हां बता नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण क्या कहेंगे, ब्राह्मणों का डर भी तो रहता है। हम तो बड़े योगी हैं, तो इतिहास को यदि देखा जाए तो समय समय पर देखा गया है एक आत्मा के लिए दूसरी आत्मा प्रेरणा बन जाती है, इंस्पिरेशनल फोर्स बन जाती है, और सारे इतिहास में ऐसा ही है। ये केवल इस आरती की बात नहीं है, परंतु इसके जैसे कितनी ही आत्माएं ऐसी रही है इतिहास में कि जिनके जीवन में क्रांति घटी, और क्रांति का कारण कोई और था, सुप्त चेतनाएं शक्तियां थी पर उनको पता नहीं थी, किसी ने आकर जगा दी। तो जगाने वाले सूक्ष्म है और बहुत है, परंतु हम भी तो तैयार हो, हमें भी तो प्रेरणा मिल जाए, तो निरंतर स्वयं को जागृत रखना, निरंतर स्वयं को स्वयं प्रेरित करना के लक्ष्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे, संडे की जो मुरली थी उसमें 2 प्रश्न थे, उन प्रश्नों के ऊपर। दूसरा प्रश्न कौन सा था? दूसरा प्रश्न विधि क्या है वायुमंडल को पावरफुल बनाने की। 3 शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है, स्वयं को पावरफुल बनाओ। सबसे पहले क्या करो, खुद को शक्तिशाली बनाओ, एक। दूसरा, उसके लिए स्वयं पर अटेंशन। तीसरा, उसके लिए बैलेंस, पावरफुल, अटेंशन और बैलेंस। 3 अंग्रेजी शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है। तो स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाए, ये प्रश्न है। क्या करें जिससे हम पावरफुल बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। शक्तिशाली अर्थात जो उदास ना हो, शक्तिशाली अर्थात जिसमें नाराजगी नहीं, शक्तिशाली अर्थात जो मूर्छित ना हो जाए, शक्तिशाली अर्थात जो बेहोश ना हो जाए, शक्तिशाली अर्थात मूड ऑफ, शक्तिशाली अर्थात मूड ऑफ न होने वाला, छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब न करने वाली, शक्तिशाली अर्थात सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थिर, उसी आरती शाह की बात लेते हैं। पहला जो उसने प्रयास किया, जो भारत से वहां गई, उसका जो वो पायलट बोट था वो 40 मिनट लेट आया, और बाद में भी लहरें इतनी तेज थी कि सबने दबाव दिया और उसको वो बंद करना पड़ा। कोई दूसरा होता तो शायद भारत वापस आ जाता, या फिर सोचता फिर से करूं या ना करूं, और उसके जो गाइड थे या फिर उनके जो मैनेजर थे वो सेकंड टाइम तो वो भी बीमार पड़ गए थे। अगर देखा जाए तो सब तरफ से परिस्थितियां विपरीत थी, पर उसने छोड़ा नहीं, कर दिया नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके लिए वो भारत में गंगा नदी में घंटों घंटों तैरती थी। प्रयत्न, प्रयास, प्रैक्टिस, 8-8 घंटा तैरना, 16-16 घंटा प्रैक्टिस, तब जाके फर्स्ट एशियन लेडी टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो प्रश्न है, स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाए? उसके लिए बाबा ने उसी मूल्य में दो चीजें बता दी है, स्वयं पर अटेंशन और योग और कर्म का बैलेंस। ये तो हेडिंग हो गए जैसे। अब इसका विस्तार, क्या किया जाए जिससे शक्तिशाली बन जाए स्थिति, मन पावरफुल हो, द पावरफुल माइंड। इतिहास को यदि स्टडी किया जाए तो ऐसे व्यक्तित्व हुए, देवर इंस्पायर्ड पर्सनैलिटीज, वैसे लोग थे इंस्पायर्ड, जिनको देखकर हजारों को प्रेरणा आई। ऐसा कुछ था कि जिनके जीवन में वो दुख और वो अशांति कहीं नहीं दिखाई दी, वो जैसे आए ही थे कोई महान कार्य के लिए। उनके शब्दों में जादू थी, प्रभाव था, शक्ति थी, प्रेरणा थी। जगदीश भाई जी ने किसी एक क्लास में सारा ही क्लास किसी एक ही शब्द पर कराया, इंस्पिरेशन। कैसा एक व्यक्ति दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। उदाहरण दिया है उन्होंने शिवाजी महाराज का, कैसे उसकी मां उसके लिए इंस्पिरेशन बन गई, कैसे हनुमान के लिए वो जामवंत इंस्पिरेशन बन गया उसके शब्द, कैसे बंदा वैरागी, कितनी उसको यातनाएं सहन करनी पड़ी, उसकी खाल निकाल दी, उसको रेत पर डाल दिया, कहां से इतनी पावर उसमें आ गई, इंस्पिरेशन। तो एक दूसरी आत्मा एक आत्मा के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, जो सुप्त चेतना और सोई हुई चेतना है वो जाग जाती है, शक्ति आ जाती है आत्मा में, बल भर जाता है, अदृश्य बल। नहीं तो कहां से इतनी शक्ति आ गई इन सब आत्माओं में। तो इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जो इंस्पायर्ड पर्सनैलिटीज थी, स्वामी रामातीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, ये ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं इतिहास में, पावर थी, चाहे उनके पास परमात्मा ज्ञान हो या ना हो, जो था और जिसमें उनका विश्वास था उसी से दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। तो फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, ऐसा क्या करे, कौन सी विधि है? बाबा ने कहा, प्रश्न पूछा है वायुमंडल को शक्तिशाली कैसे बनाए, उत्तर दिया स्वयं को पावरफुल बनाओ, दूसरा अप अपने ऊपर अटेंशन, और तीसरा बैलेंस। तो 10 बातें बताओ जिससे हम स्वयं को शक्तिशाली बनाए। और शक्तिशाली की परिभाषा, उदास नहीं, मूड ऑफ नहीं, डिप्रेस नहीं, परिस्थितियां विपरीत है परंतु उमंग उत्साह में निरंतर है। कोई भी चीज मूड ऑफ नहीं कर देती, किसी का किया हुआ अपमान या फिर किसी में हम अटैच नहीं, मोह नहीं। सुबह का है बाबा ने मुरली में, मोह एक में रखो बस, बुद्धि योग सबसे क्या कर दो, तोड़ दो, हटा दो। भक्ति मार्ग में भी जब बैठते हैं तो बुद्धि यहां जाती है, वहां जाती है, यहां जाती है, यहां पर भी केवल एक में मोह रखो। और दिन रात लड़ाई है, कभी हार है कभी जीत है, परंतु एक पॉजिटिव चीज है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ कौन है? उस्ताद, समर्थ और सर्वशक्तिवान उस्ताद तुम्हारे साथ है। तो क्या करें जिससे आंतरिक स्थिति शक्तिशाली हो जाए? और जो अंदर से शक्तिशाली है उसको कोई नहीं हिला सकता, कोई उसको डिगा नहीं सकता। जो भी हमारी हार होती है आंतरिक कमजोरी की वजह से होती है। बाहर की कोई परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती, कोई बीमारी, कोई किसी का अप किया हुआ अपमान, किसी का दिया हुआ धोखा, या सेवा की व्यस्तता, या सेवा की अधिकता, या शारीरिक कमजोरी, ये सब कुछ नहीं थकाता है कभी। थकाने का काम कुछ और करता है, थकाते हैं संकल्प। जितने कमजोर संकल्प उतनी आत्मा ज्यादा थकती है, जितने शक्तिशाली संकल्प आत्मा थकान का अनुभव नहीं करती है, क्योंकि आत्मा में बल ही इतना भरा है। तो क्या करें? ब्रह्मा भोजन बाद में, पहले दूसरी चीजें बताओ। सबसे पहले इतिहास का अध्ययन करो। शक्तिशाली बनना है तो उन आत्माओं का जीवन स्टडी करो जो शक्तिशाली थी। यज्ञ का संपूर्ण इतिहास, एक एक दादी का जीवन अनुभव, यदि आपके मोबाइल में वो सारा नहीं है तो सबसे पहले वो सारी दादियों की क्लासेस, यज्ञ हिस्ट्री की क्लासेस, एक एक दादी का अनुभव, मम्मा का अनुभव, दादी का अनुभव, ब्रह्मा बाबा, ये सारे जो ओल्ड क्लासेस है उनको पहले स्टडी करो। जब तक वो नहीं करेंगे वो फील नहीं आएगा कि यज्ञ मेरा है, वो बाबा से जो प्यार है वो नहीं आएगा। जब हम उन आत्माओं को स्टडी करेंगे जिन्होंने इस प्यार के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, कहीं पर हमने पढ़ा या सुना, यदि भगवान से प्यार नहीं, जाओ जाकर सो जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो योग में। प्यार, प्यार भी कैसा, आग की तरह। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट एक जगह आते हैं जो कि भगवान का मंदिर है, सिनेगॉग जिसको कहते हैं यहूदी में, यहूदियों का मंदिर सिनेगॉग। उस सिनेगॉग में आकर देखता है यहां क्या हो रहा है, भगवान का मंदिर और वहां पर लोग जुआ खेल रहे, पशु पक्षी बेच रहे। वो एक ही ऐसा मौका है, दौर है जिसमें ईसा मसीह वायलेंट हिंसक हो जाता है और पकड़ पकड़ के एक एक चीज को उठा उठा कर फेंकता है। वो जितने भी जुआ खेलने वाले थे उनके जो मेज और उस पर सामान और वो पक्षी, उन सबको छुड़ाता है और वो वहां कहता है यू हैव टर्न्ड the temple of God into a den of thieves. तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया मेरे पिता के घर को. और एक पावरफुल वाक्य है वहां पर, द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर. परमात्मा के इस घर के लिए जो प्रेम है मेरे हृदय में आग की तरह है. ऐसा प्यार परमात्मा यज्ञ से, परमात्मा श्रीमत से, ऐसी प्रतिज्ञा कि कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी हो जाए, परंतु हम संपूर्ण निर्विकारी बनकर रहेंगे. विकार चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, इन एक एक विकार को परास्त कर देंगे. ऐसी प्यूरिटी के लिए लगन, प्रेम, आग हृदय में हो. और विकार बहुत शक्तिशाली. आज कहा है यदि कोई पक्षी मर जाता है तो क्या होता है, चींटियों का झुंड आता है, उसको ले जाता है. यहां मरता नहीं, यहां तो कच्चा ही चबा खा जाते हैं विकार. मरने की बात दूर, ये उदाहरण दिया है मुरली में. तो द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर. इस परमात्मा यज्ञ के लिए जो प्रेम हो, धधकता हुआ हो, अग्नि के रूप में प्रेम, सर्वस्व स्वाहा करने की तैयारी. तो शक्तिशाली बनने के लिए पहले उन आत्माओं का जीवन स्टडी करो, अध्ययन करो कि जो शक्तिशाली थी, समर्थ थी, पावरफुल थी, बलिदान जिनका श्रृंगार था, ऐसी आत्माएं, उनका जीवन जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो हम और शक्ति के बीच में एक बहुत दूरी होगी. हमेशा कमजोर कमजोर, हमेशा ढीले संकल्प, हल्का पुरुषार्थ. पुरुषार्थ में आग नहीं होगी. पुरुषार्थ होगा पर आग चाहिए, आग. पावर चाहिए पुरुषार्थ में. आत्मा तपे उस परम धाम में स्थित होकर, तो कहीं विकर्म, विकार, विकल्प, पुरानी स्मृतियां, भोग की पुरानी विकारी स्मृतियां, उससे कैसे मुक्त होंगे. जन्म जन्म के पाप, ढीले पुरुषार्थ से नहीं होगा, शक्तिशाली पुरुषार्थ चाहिए. तो पहली विधि शक्तिशाली आत्माओं के जीवन का अध्ययन. दूसरा, मुरलियों का गहन अध्ययन. जब भगवान कह रहा है एक एक महावाक्य अमूल्य है, क्या इस वाक्य को हमने समझा? जब वो कह रहा है कि एक महावाक्य अमूल्य है, लाखों का है एक एक वर्षन, तो मुरली पढ़ते समय वो याद रहे कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं लाखों का है. ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है. आज सुबह का वरदान था, विशेषताओं से भरा हुआ जीवन. संडे मुरली थी. कैसा है ये जीवन? ब्राह्मण जीवन अमूल्य है. तुम्हारे सामने संसार के हीरे जवाहरात क्या है? मिट्टी. तुम बाप के गले की जो माला है उसके विजयी रत्न हो. तो ज्ञान के एक एक पॉइंट का अनुभव. 12 तारीख को मुरली चली थी. बाबा ने कहा है नवीनता क्या लाओगे, तो नवीनता है अनुभव. कौन सा अनुभव? ज्ञान के एक एक पॉइंट का अनुभव, गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव और आत्मिक स्थिति का अनुभव. पांच प्रकार के अनुभव करो. काम दिया है लेटेस्ट जो मुरली चली है शांतिवन में, रिकॉर्डेड मुरली 31 अक्टूबर 2006. उसमें पहले तीन तो हमको पता है, पर लास्ट दो परमात्मा प्रेम का गहरा अनुभव और आत्मिक स्थिति का अनुभव. लंबा लंबा समय परम धाम में स्थित हो जाए और इतना लंबा समय आत्मिक स्वरूप में रहे कि नीचे आने के बाद देह और देह के आकर्षण और देह मिट्टी लगे। और ये भान चला जाए, ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये स्त्रीत्व और ये पुरुषत्व से ऊपर उठे आत्मा, द्वापर से उसी आकर्षण में विकारों में गोते लगा रही। आज कहा ना, बचाने वाला ये एक ही बात है, बाकी सबने क्या किया, डुबोया तुमको विकारों के, बाकी सब डुबोने वाले, तारक तारने वाला एक ही है। तो दूसरा है शक्तिशाली बनने के लिए गहन अध्ययन, डीप स्टडी, वैसी स्टडी जैसे कोई स्टूडेंट पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए करता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी करता है, ग्रुप बनाकर स्टडी करते हैं, दिन रात भूल जाते हैं, कुछ खबर ही नहीं रहती है उनको संसार में क्या चल रहा है। वैसी स्टडी चाहिए मुरलियों की, तब कहीं वो पॉइंट अंदर जाएगी, नहीं तो केवल सुन के रखा है बस, कितनी मुरली आई और कितनी चली गई, उसका कोई असर ही नहीं, कोई प्रेरणादायी कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ वही वही है। वरदान को बुद्धि में ठहराने के लिए क्या करो, सेवा में यूज करो सुबह का वरदान। यदि प्रैक्टिकल में लाना है तो वरदान बुद्धि में फिट हो और उसको सेवा में यदि प्रयोग करो तो अपने आप बुद्धि में ठहर जाएगा। मैं सहजयोगी हूं, सहजयोगी ही सहयोगी, सहयोगी ही सहजयोगी। तो ज्ञान की पॉइंट्स, ज्ञान की मुरली इतनी बार अध्ययन करो और इतनी शक्तिशाली रीति से अध्ययन करो कि वो याद रह जाए, और जो चीज याद है वही परिस्थिति में काम आएगी, जो याद ही नहीं वो कैसे काम आएगी। जब ज्ञान बुद्धि में है तो ही तो हम प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम जब परिस्थिति आएंगे तो देख लेंगे ज्ञान का प्रयोग करेंगे, नहीं हो सकेगा। ज्ञान तलवार है, योग कवच है, ड्रामा ढाल है, ये तीन चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल। इमरजेंसी में सबसे ज्यादा काम कौन आता है, ढाल। तो शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली अध्ययन, पावरफुल स्टडी, सेल्फ स्टडी एक होती है, क्लास स्टडी एक होती है जो क्लास में बैठ के की जाती है, वो नहीं, वो सार्वजनिक स्टडी है, वो तो सबके लिए। एक है खुद सेल्फ स्टडी करना, बैठकर अपनी एक अलग स्टडी चालू हो। स्पार्क की बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी एक किताब ले लो और अपना एक सीरीज, व्यक्तिगत सीरीज चालू करनी है हर एक को। ढेर सारी किताबें हैं छोटी 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 छोटी, सबसे जो छोटी होगी वो ले लो वहां से, चाहे वैरा की या टीचर की या ब्राह्मण परिवार या असत्य या श्रीमत या जो भी, कोई भी एक ले लो और उसकी थोड़ा सा अध्ययन, सुबह एक पैराग्राफ और वही पैराग्राफ का रिविजन रात में सोते समय, उतना एक ही पैराग्राफ, एक ही परिच्छेद बस, और उसको दिन भर में प्रयोग करना है, दिन भर में प्रयोग करना, उसका नए नए प्रयोग करना ज्ञान के, ऐसे ऐसे प्रयोग जो आज तक हमने सोचे भी नहीं थे कि ये भी प्रयोग किया जा सकता है क्या, ऐसे ऐसे प्रयोग, नए नए प्रयोग। जैसे उस दिन कहा दुआओं की सीढ़ी, इस सीढ़ी पर चढ़ना, तीनों लोकों की सैर, दुआओं की लिफ्ट चढ़ना नहीं, लिफ्ट लिफ्ट। तो दूसरी विधि है शक्तिशाली बनने की, शक्तिशाली अध्ययन। तो कोई भी बुक ले लेना और उसका पूरी अव्यक्तवाणी भी स्टडी की जा सकती है, पर वंतु बहुत ज्यादा डोज हो जाता है क्योंकि आठ आठ छह छह पेजेस की एक एक अव्यक्तवाणी है। तो दूसरा मार्ग है स्पार्क की किताबें। तीसरी चीज शक्तिशाली बनने के लिए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात मानस चित्र, इमेजिन करना। और इमेजिन सब नहीं कर पाते, इमेजिनेशन करने के लिए भी पावर चाहिए, इमेजिनेशन करने के लिए भी प्यूरिटी चाहिए। और संसार की जितने खोज हुई है आज तक किस आधार पर हुई है, पहले किसी ने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या? सोचा, विचार किया, कल्पना की मन में कि यह क्या यह संभव है, और फिर उसके ऊपर काम किया। और जब जब किसी ने नया कुछ करने की कोशिश की, लोगों ने विरोध जरूर किया, तीन स्टेजेस से हर बार जब भी कोई नई चीज होगी तीन स्टेजेस से गुजरेगी। सबसे पहले परिहास, लोग हंसेंगे, चाहे पुरुषार्थ हो या संसार की कोई खोज। दूसरा विरोध, अपोजिशन। और तीसरा स्वीकार्य, एक्सेप्टेंस। पहले हंसेंगे, फिर विरोध करेंगे और फिर स्वीकार करेंगे, पर पहली दो स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। वही इस यज्ञ के साथ भी हुआ, वही हर धर्म के साथ भी हुआ, वही हर खोज के साथ भी हुआ। जिसने कहा था कि धरती गोल है और बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। कैसी अधार्मिक बातें कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि धरती घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द, सूरज नहीं घूम रहा है, उनको भी पकड़ पकड़ कर सूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऐसी बातें किताबों में नहीं थी। तो मन की आंखों से क्या करना, देखना। मुरली एक है पढ़ना, उसके भी आगे की स्टेज है उसको देखना। मुरली को पढ़ना नहीं है, देखना है, साक्षात देखना। बाबा कहते हैं देखो देखो, ये तुम्हारा स्वरूप है, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखना, निर्विकारी स्वरूप को देखना, संपूर्ण स्वस्थ स्वरूप को देखना। हेल्थ वेल्थ है तो और क्या चाहिए, आज कहा ना सुबह, उस स्वरूप को देखना जो हम बनना चाहते हैं, उसको देखना। हर एक चाहता है कि बहुत प्योर बने, क्योंकि प्यूरिटी की खींच है हर मन में। एक बहन का अनुभव है, उसकी शादी हुई और एक या दो साल में ज्ञान में आ गए। पहले वो ज्ञान में आई, फिर युगल ज्ञान में आए, और दोनों बहुत अच्छे से चलने लगे। फिर युगल ने शरीर छोड़ दिया, फिर वो बहन, तब भी विकारों में उसे कोई रुचि नहीं थी पहले भी, और बहुत प्योर। और फिर मधुबन आए और फिर मधुबन रहे, और फिर यहां से घर गए, और फिर घर से सेंटर, और सेंटर में है सब कुछ ठीक है, पर अचानक से विकारों का आकर्षण फिर से, जो कि पहले नहीं था पर अब हो गया। और विकार ऐसी चीज है कि क्रिया में ही पश्चाताप समाया हुआ है, संकल्प में ही पश्चाताप समाया हुआ है, साथ साथ सोच में भी साथ साथ पश्चाताप है, परंतु देखा जाए तो हर आत्मा में खींच है प्यूरिटी की। तो अपने प्योर स्वरूप को देखना, ये मैं हूं, बार बार उसको इमर्ज करना। सत्युग और त्रेता यहां है, हम यहां है, बीच में इतना बड़ा गैप, क्या ये संस्कारों को यहां बैठकर कैच किया जा सकता है? बीच में 5000 साल है, ये इधर है, हम इधर है, बीच में बहुत कुछ हुआ है गड़बड़ द्वापर से। बार बार स्मरण, बार बार स्मृति, बार बार चक्र घुमाना, बार बार देखना कि ये था, ये है, ये फिर होगा, तो वहां के वो संस्कार आत्मा कैच कर सकती है, क्योंकि डीप सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ। ऊपर की सारी जो परतें हैं सब ढीली हो जाएगी, फट जाएगी, यदि ये इमर्ज हो जाए तो बार बार देखते रहना उसको, बार बार स्मरण करते रहना, बार बार विजुलाइज करते रहना उस स्वरूप को, फरिश्ते स्वरूप को, उस बिंदु स्वरूप को, जहां आत्मा परम धाम में है, ना स्त्री है ना पुरुष, निर्लिंग है, केवल आत्माओं का वो धाम है, शरीर है ही नहीं, उसी धाम में लंबा लंबा समय तक टिके रहना। मैं आत्मा परम धाम में हूं, 700 करोड़ आत्माओं के बीच सब आत्माएं। अब ये आत्माएं जाएगी नीचे, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, परंतु निराकार है आत्माएं। उस स्थिति का लंबा लंबा समय अभ्यास, तो प्यूरिटी इमर्ज होगी, प्यूरिटी के लिए खींच होगी, आकर्षण होगा, और देह की जो पकड़ है वो कम होगी। तो तीसरी विधि है विजुलाइजेशन, चौथा सोमान, सोमान का गहरा अभ्यास। संडे जो व्यक्तवाणी चली थी 12 तारीख को, 3 सोमान का बाबा ने अभ्यास कराया था, 1 सोमान कहा और साइलेंस, दूसरा सोमान दिया फिर साइलेंस, तीसरा सोमान फिर साइलेंस। भगवान बैठ ड्रिल करा रहा है, मैं श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मणात्मा हूं। जब तक बाबा का नेक्स्ट टर्न नहीं होता, इन 3 सोमानों का अभ्यास करना है दिन भर। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मनसा शक्ति से सारे विश्व में शक्तियों की किरणें फैला रहा हूं। सारी दिनचर्या में बीच में बहुत बिजी है सेवाओं के बीच, अचानक संकल्प लाना है, स्टॉप कर देना ट्रैफिक को, कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मनसा से शक्तियां फैल रही है, आसपास की आत्माएं और दीवारों को क्रॉस कर वो शक्तियां बाहर जा रही है, संसार की आत्माओं में बल भर रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। जिम्मेवारियों का बोझ भी बाप को देने वाले, कल वरदान में था, और लाइट रहने वाले, हल्का मन। मैं पुरुषोत्तम हूं, अर्थात पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम। मैं श्रेष्ठ हूं, अर्थात कनिष्ठ नहीं, अर्थात नीचे नहीं, ऊपर। यदि कोई आत्मा विकार से भरी है, कोई ब्राह्मण आत्मा और जिसमें मोह बहुत है, और भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाए, तो बाबा को बदबू आएगी उससे, क्या हम वो बनना चाहते हैं? यदि अभी इसी वक्त हम भगवान के सामने खड़े हो जाए, भगवान को कौन से फूल पसंद है? खुशबूदार, जिनमें प्यूरिटी की खुशबू है। यदि मोह युक्त आत्मा है, यदि विकार के संकल्प उसमें है, तो भगवान क्या करेगा? मुंह फेर लेगा ना, समान समान निकालने हैं मुरली से हम बेहद के वैरागी है। संसार का सुख, दो शब्दों का प्रयोग किया आज की मुरली में, कैसा है? क्षणभंगुर, तीन शब्दों का प्रयोग है, एक क्षणभंगुर, दूसरा वो जो संसार के लोग है करके कोई सुख देगा वो भी क्षणभंगुर। बाप तुम्हें सदा काल का सुख देने आया है, संसार के सुख क्षणभंगुर है, संसार के सुख कागविष्ट समान है, तीसरा संसार के सुख आर्टिफिशियल। तीन शब्द है, आर्टिफिशियल है, झूठे, ऊपर ऊपर के दिखावे है, सतही कृत्रिम, कुदरती नेचुरल नहीं है। क्या मैं आत्मा इन संसार के सुखों और भोगों में अपने जीवन को नष्ट कर दूं? तो समान, महान समान, श्रेष्ठ समान मुरलियों से खींच कर निकालने, उसके लिए डीप स्टडी चाहिए। ऊपर ऊपर से सुन लिया, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत लिख लिया, उससे काम नहीं होगा। लिखना है परंतु मन की डायरी पर। अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग ऑन माय माइंड, माय माइंड इज लाइक अ स्लेट बट वंस रिटन नथिंग कैन इरेज इट। मेरे मन पर लिखना बहुत कठिन है, मेरा मन एक स्लेट की तरह है, पर यदि उस पर कुछ लिख दो तो फिर मिटा नहीं सकते। माइंड को इतना पावरफुल, उस कलम से उस पर लिख देना सारी चीजें, शक्तिशाली चीजें, ताकि कभी ना मिट सके। मुरली की एक एक पॉइंट, एक एक वाक्य, एक एक महावाक्य। संडे की मुरली में कहा ना, एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड और एक एक श्वास अमूल्य है। एक एक सेकंड जन्म जन्म की प्रलब्ध बनाने वाला है। क्या किया आज दिन भर? वेस्ट कर दिया, इधर उधर की बातें, यहां वहां की बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या होता है, वो क्या होता है, यहां घूमना वहां घूमना, हे खाऊं वो खाऊं, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाबा ने कहा संडे की मुरली में, साधारणता और अलबेलेपन के कारण अपने महत्व को, अपनी विशेषता को नहीं जानते। पांचवी विधि शक्तिशाली बनने की, ड्रिल, एक सेकंड की ड्रिल, बीच बीच में ड्रिल करते रहना बार बार, अशरीरी होने की, अभी अभी यहां और अभी अभी शरीर से बाहर। योग को बढ़ाना है सबसे पहले, तो शाम को 6 बजे से लेकर तो 8 बजे तक, यह है नुमा शाम के योग का टाइम, 6 बजे से लेकर तो 8 बजे तक हिलना नहीं बिल्कुल बाबा के कमरे से। हां, अगर सेवा है वो दूसरी बात है, पर जिनको सेवा नहीं है और आराम से चालू करते 6:30 बजे और फटक से उठ जाते 7:30 बजे, जैसे भोजन अभी खत्म ही होने वाला है, कम से कम 2 घंटा बैठ के शाम का और सुबह भी 2 घंटा बैठिए। तो 2 घंटा बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कल की मुरली में था चीटियों, नहीं नहीं चीटियां नहीं, विहंग मार्ग की एक है और एक है चीटी वाला मार्ग। चीटी वाले मार्ग का पुरुषार्थ नहीं चाहिए, विहंग मार्ग का पुरुषार्थ। बाबा विहंग मार्ग सेवाओं के लिए प्रयोग करते, हम पुरुषार्थ के लिए बोल रहे हैं, वो है चीटी वाला पुरुषार्थ। सुबह अमृत वेला उठना, अमृत वेला करना, फिर उसके बाद में वॉकिंग वॉकिंग थोड़ा करना, फिर मुरली सुनना, फिर नाश्ता करना, फिर सेवा करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, रेस्ट करना, शाम नुमा शाम का योग करना, रात में मुरली डिस्कशन करना, चार्ट लिखना, सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहा जाता है? साधारण पुरुषार्थ। हम कहा है बिलो साधारण तो नहीं है, माइनस में। ये साधारण पुरुषार्थ है, याद में भोजन करना, बीच बीच में याद करना, ड्रिल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, शाम का योग करना, चार्ट बिट लिखना, मुरली डिस्कशन करना, ये सब साधारण पुरुषार्थ है। तीव्र ये सब को डबल कर दो, उसे कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। इसकी अवधि बढ़ा दो, वो है तीव्र पुरुषार्थ। चिंतन कर रहे हैं इसमें संतुष्ट नहीं हो जाना है, शक्तिशाली चिंतन हो, पावरफुल योग की स्टेज हो। योग कर रहे तो खाली योग, फिर उसमें बहुत सारी चिंतन की बातें नहीं चाहिए। सार, पॉइंट ऑफ लाइट, एक ही परमधाम में लंबा लंबा समय तक टिकने का अभ्यास। बिंदु परमधाम में हूं, वहीं पर नए नए अभ्यास। तो ड्रिल, ड्रिल करनी है। उसके बाद में शक्तिशाली बनने की अगली विधि है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नयापन होना चाहिए। वही चीज नहीं करनी चाहिए। ज्ञान में नयापन, योग में नयापन, धारणा में नयापन, सेवा में नयापन। सेवा की भी नई नई विधियां। इस मुरली में भी बाबा का शांति का शिविर, शांति का सप्ताह, शांति की एडवर्टाइजमेंट, शांति का समागम करो। क्या करो? शांति की का शिविर, शांति की एडवर्टाइजमेंट, शांति का समागम, शांति का सप्ताह, ये करो। ताकि क्या हो जाए, संसार की पहला जो प्रश्न था वो क्या था, नया प्लानिंग क्या है, तो सब आए उनको चार चीजें पता चल जाए। पहली चीज यही वो आत्मा है, दूसरी चीज यही विधि है, तीसरी चीज असली प्राप्ति यही है, और चौथी चीज यही स्थान है। उनको अनुभव हो जाए कि यही है वो, यही वो लोग हैं, यही वो विधि है, यही वो स्थान है, और यही असली प्राप्ति है, और कहीं नहीं है। ये अनुभव उनको कराना, ये नयापन है। तो हर चीज में नयापन हो, हर चीज में क्रिएटिविटी हो। कैसे क्रिएटिव बनाए? जैसे आज अभी हम सो रहे, कल सुबह का अमृत वेला है, क्या उसको वैसा ही करना है जैसे अब तक कर रहे थे, या उसमें कुछ नयापन लाए? क्या वही साधारण, कोई इधर गिर रहा है कोई इधर? बीच में एक बार कुछ समय पहले रतनमणि दादी ऊपर थे, और ढेर सारी माताएं थी मेडिटेशन हॉल में, सब सो रही थी, इधर उधर गिर रही थी। बीच में ही दादी ने 4:15 बजे लाइट ऑन करा दिया वाइट, और कहा सब खड़े हो जाओ, मैं बैठो वापिस। अगर ऐसा अमृत वेला चल रहा है, कहां भगवान से प्यार, धुन लगी जाए, लग जाए। जागती ज्योत हो अमृत वेला। आज भी कहा सुबेरे का समय बहुत अच्छा है। देह के सर्वधर्म को भूल, मुझ बाप को याद कर, टाइम है अमृत वेला। सब कुछ खाक होने वाला है, कहा ना सुबह। तो नवीनता, क्या नवीनता लानी है? खुद ही बैठकर लिखना है, सोचना है, डिस्कस करना है, पूछना है, क्लासेस सुननी है, उससे पता चलेगी। रोज एक क्लास सबने सुननी है, इसका एक रूल बना दो, 4:45 से लेकर 7 बजे के बीच, और हो सके तो उसमें नोट्स निकालने, और फिर उसी क्लास को हो सके तो शाम को सुनना, या फिर वो जो नोट्स है उसको रिवाइज करना, क्या है उसमें, ताकि नई बातें पता चले और स्थिति थोड़ी ऊपर उठ जाए, क्योंकि दूसरों का चिंतन उसमें आ रहा है और वो चिंतन शक्तिशाली है। वो हमको ऊपर उठाएंगे। उन शब्दों में उस आत्मा के प्यूरिटी के वाइब्रेशंस है, केवल शब्द नहीं है, पावर है उसमें, जन्म जन्म की तपस्या के बल है दादियों की क्लासेस में। तो क्रिएटिविटी, उसके बाद में अगला शक्तिशाली बनने के लिए प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य और ज्ञान सरोवर जैसा वातावरण तो और कहां होगा। ऐसा मौन, ऐसा एकांत, ऐसी निसर्गरम्य, ऐसा निसर्गरम्य वातावरण, ऐसे वातावरण का लाभ उठाना है प्रकृति। माइंड मन खुल जाता है वहां पर। अगली विधि है मौन। सुबह शाम जितना हो सके बीच बीच में मौन का अभ्यास। अगली विधि है एकांत। ये सब जुड़े हुए चीजें हैं, परंतु जितना हो सके एकांत में रहना, एकांत में बैठकर चिंतन करते रहना, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर आश्चर्य से देखना ज्ञान को। कितनी नई बातें हैं, ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं, ऐसे अपने आप से बातें करना, ये तुमने क्या कह दिया, कितनी नई बात है। तो एकांत, अगली विधि है लिखना। रोज एक टॉपिक या कम से कम 5 टॉपिक निकालना मुरली से और उसके ऊपर क्या करना, लिखना। जैसे आज सुबह पांडव भवन में 3 बहनों ने 3 टॉपिक के ऊपर बोला। एक बहन ने बोला स्नेह का विमान, किसी ने कहा स्नेह का चुंबक और स्नेह की दुआओं की सीढ़ी, उसी मुरली से निकाले हुए टॉपिक जो नीचे चली थी। तो रोज की मुरली से, जैसे आज की मुरली से 2 टॉपिक आपको दे रहे हैं, लिखो। मिरुआ मौत मल्लुका शिकार पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक संग तारे कुसंग बोरे, निकल गए ना 2 टॉपिक, पर हमने लिखा ही नहीं इसके ऊपर। लिखना है, मेहनत का काम है ये। मन तो चाहता है बिल्कुल आराम, उसको ये लिखना विखना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचना तो सबसे डिफिकल्ट काम है संसार का, सोचने का काम जिन्होंने सोचना है वो सोचेंगे, हम क्यों सोचे। लिखना तो उससे डिफिकल्ट है, परंतु उसको आदत बनानी है, नई आदतों का निर्माण करना है, क्रिएशन ऑफ न्यू हैबिट्स। आज का है ना ऐसा अभ्यास डालो, कौन सा भाई नहीं बताएंगे, माताएं बताएंगी, कौन सा अभ्यास डालो, तभी हम समझेंगे आज की मुरली पढ़ी है या सुनी है। डैश 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 ऐसा अभ्यास डालो, रुको माताएं बताएंगी। हाँ स्त्री याद आए, माए, हाँ ठीक है। कोई भी याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालो। अभ्यास डालना है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कोई याद नहीं, सब मरे पड़े हैं, कौन माँ कौन भाई कौन बहन कौन बीवी कौन बच्चे कौन किसका, 84 जन्मों में 84 संबंध। तो भागवत में कहानी है, एक राजा है जिसके पास पुत्र नहीं है, पुत्र की अभिलाषा है, 2 रानियां हैं, पुत्र चाहिए, बहुत आराधना करते हैं, पुत्र मिलता नहीं है। एक साधु के पास जाते हैं, साधु को कहते हैं पुत्र दो, साधु कहते हैं पुत्र तो नहीं दे सकते क्योंकि भाग्य में नहीं है। वो कहता है कुछ भी करो दो, वो कहता है दूंगा परंतु अल्पकाल, वो ज्यादा समय नहीं रहेगा, दीर्घायु नहीं होगा। वो कहता है चलेगा पर चाहिए। पुत्र आ जाता है, जश्न मनाया जाता है, थोड़े समय के बाद पुत्र की मृत्यु, फिर से दुख। नारद वहां से गुजरता है, राजा कहते कम ईयर, तुमने तो पुत्र दे दिया, ले लिया, क्या फायदा हुआ, नारद कहता है मैंने तो पहले ही कहा था, नाउ डोंट टेल दैट, हमको चाहिए। नारद कहते लो ये है, वो पुत्र जन्म लेता है, वो आत्मा आती है वहां पर, उससे बात होती है। वो नारद उससे कहता है ये देखो ये पुत्र आ गया तुम्हारा। वो पूछता है पुत्र से, कहता है नारद ये तुम्हारे माँ पिता है। वो पुत्र कहता है कौन से माँ पिता, किस जन्म के, मैंने इतने जन्म ले चुका हूं, मैं हर जन्म में अलग अलग माँ बाप, ये किस जन्म के मुझे याद भी नहीं है कौन से, कभी ये बना कभी कुछ बना कभी कुछ बना, ये भागवत में है। तो ये अभ्यास डालो, तो नई आदतें क्रिएट करनी है, निर्माण करनी है। तो लिखने की आदत, टॉपिक उठाओ उसमें से, कुसंग से क्या क्या नुकसान है, कुसंग क्या, कुसंग मतलब खाली साथ में रहना, इसको संग नहीं कहते। संग कौन सा, विचारों का संग, भावनाओं का संग, स्मृतियों का कौन सा संग चल रहा है, कौन सी स्मृतियों में मैं रमन करता हूं, विकार की या कोई श्रेष्ठ प्रभु मिलन की स्मृति, परमधाम की स्मृति या संसार की कोई स्मृति, किसी मित्र की याद आ रही है या परम मित्र की याद आ रही है, किसकी याद आ रही है। वैसे आज की मूर्ति में मित्र के लिए क्या कहा, भाई बताएंगे, रुको पप्पू भाई, मित्र के लिए बाबा ने क्या कहा आज, संदीप भाई मित्र के लिए क्या कहा, प्रभाकर भाई मित्र के लिए क्या कहा, दिलीप भाई, अमित भाई, कुछ तो कहा है मित्र के लिए। वो लोग ये समझते नहीं पर एक दिन वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, संसार के लोग क्या बन जाएंगे, तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम विश्व मित्र हो ना, तो विश्व तो बनेंगे, मित्र तुम्हारे बनेंगे। तो यही कहना चाहते थे, सुनने में थोड़ा लेट हो गया तो लिखना, राइटिंग, रोज नया टॉपिक खींच के निकालना, उसमें से अलग से रखना, लिखो या तो सोचो, लिखना नहीं है तो ठीक है चलेगा, परंतु सोच तो सकते हो कि कुसंग से क्या क्या होता है, ब्राह्मण जीवन में कुसंग कौन सा है, सत्संग कौन सा है, किसे सत्संग कहते हैं और किसे कुसंग कह रहा है भगवान, मिरुआ मौत मल्लुका शिकार अर्थात क्या, क्या होगा अंत में और कैसा दृश्य होगा, कैसा भयावह खतरनाक खौफनाक डरावना दृश्य होगा, उसमें हमारी स्थिति क्या होगी। ये कहावत कहां से आई, किस धर्म से, किस लिटरेचर से आई, उसका संशोधन खोज रिसर्च करना, तो फिर माइंड शक्तिशाली होगा। कितने हो गए, हो गए 10, बस वो तो चालू रहेंगे तो अमृत वेला हो जाएगा तो इसको 10 में ही रोकते हैं। तो प्रश्न था शक्तिशाली कैसे बने, प्रश्न था कि वृत्ति से वायुमंडल को कैसे बनाए, उत्तर था स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, स्वयं को पावरफुल, उसके लिए स्वयं की चेकिंग। तो अपने आप की चेकिंग करते रहना और कर्म में योग को जोड़ते रहना, बार बार जो कर्म है उसमें बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास, बीच बीच में टाइम मिला तो लिखना, बीच बीच में मुरली की पॉइंट्स याद करना, बीच बीच में आत्माएं देखना, ये सब आत्माएं हैं। और कौन सी आत्माएं है, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, ये नहीं देखना ये बीके ये नॉन बीके, ऐसा कुछ नहीं देखना, सब होवनहार देवताएं है ऐसा ही देखना। ये स्टैम्प कहां से लगा दिया हमने, बीके और नॉन बीके का, हम कौन है किसी को श्रापित करने वाले, ये शब्द ही हटा देना चाहिए, नॉन बीके। क्या कहना चाहिए फिर, भावी ब्राह्मण, ये जरा ठीक है, ये प्रोग्राम नॉन बीके का है। किसने बोला नॉन बीके का, क्या वो ब्राह्मण नहीं बनने वाले, स्टैंप किसने लगाने की ऑथोरिटी अधिकार हमको किसने दिया, सब देवकुल की आत्माएं है। मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं विश्व का बाप हूं, भगवान के महावाक्य है, ये मत समझना मैं केवल तुम्हारा बाप हूं और केवल तुम्हारे लिए आया हूं, सारे जगत का बाप हूं। तो मन को शक्तिशाली बनाना, अटेंशन देना और बार बार चेकिंग करना, शांत स्वरूप रहना, जितने हम रहेंगे उतने दूसरों को बना सकेंगे। शांति की एडवर्टाइजमेंट, शांति का समागम, शांति का शिविर, शांति का सप्ताह। और आज की मुरली से कौन सा अभ्यास डालो, कोई भी याद ना आए, एक के अतिरिक्त सारे मोह समाप्त, सारे कुसंग समाप्त, शक्तिशाली मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, और स्टीमर तुम्हारी बोट चल पड़ी है, तुम्हारा स्टीमर चल पड़ा है, लंगर उठ चुका है, तुम साजन खड़े हैं उस पार, वो लेने आया है, अब चलो उसके साथ। ओम शांति।